भागवत के सातवें स्कंद में सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज के प्रश्न के उत्तर में एक संवाद उनको सुनाते हैं जो कि युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि के बीच में हुआ था। और ये संवाद कौन सा है? प्रह्लाद और हिरण्यकश्यप का। जब ये कथा समाप्त हो जाती है तो युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से प्रश्न करते हैं कि आदर्श मनुष्य को कैसे होना चाहिए, और जो चार वर्ण हैं और चार आश्रम हैं उनमें लोगों के कर्तव्य क्या होने चाहिए। चार वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रम है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो इसके बाद में नारद मुनि बड़े सुंदर ढंग से इन सारे वर्णों और आश्रमों में जो कर्तव्य हैं उनका वर्णन करना आरंभ करते हैं। और आज हम इस एक विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि गृहस्थ आश्रम के अंदर कौन से कर्तव्य होने चाहिए, जीवन की पद्धति कैसे होनी चाहिए, गृहस्थ आश्रम में लोगों को कैसे रहना चाहिए। आपको सुनना है, पालन करेंगे? ये नारद मुनि कह रहे हैं, हम केवल उनके वचनों को दोहराएंगे, बस अपने को बात नहीं बोलेंगे। तो कोई झगड़ा करना है हमारे साथ में आके मत कीजिए फिर। वैसे प्रश्न ये उठ सकता है कि यहां तो सभी लोग गृहस्थ आश्रम में नहीं है, और खास करके जो बोलने वाला है वो तो है नहीं, तो फिर कैसे गृहस्थ आश्रम के ऊपर चर्चा करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? वैसे नारद मुनि भी कहां गृहस्थ है, वो भी तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, फिर उनको कैसे इतना ज्ञान गृहस्थ आश्रम के बारे में, वो क्यों इतना उपदेश दे रहे हैं? इसी कारण से कि जो जिस व्यक्ति ने संसार में जन्म लिया है उसे ये सारे शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए कि कैसे हमें जीना चाहिए और कैसे दूसरों को जीना चाहिए अलग अलग स्थितियों में। क्योंकि जो भक्त होते हैं वो हमेशा दूसरों को मार्गदर्शन करते हैं, जो जन साधारण समाज में होते हैं उनको ज्ञान नहीं होता। इसलिए शास्त्रों का ज्ञान भले वो संन्यास आश्रम के बारे क्यों ना हो या गृहस्थ आश्रम के बारे में क्यों ना हो, सभी को मालूम होना चाहिए। ब्रह्मचारी को चाहिए, वानप्रस्थी को चाहिए, सन्यासी को चाहिए, और सबसे ज्यादा गृहस्थ को चाहिए। और साथ साथ जब कोई व्यक्ति गृहस्थ नहीं होता, जब ये सारे चीजें सुनता है तो फिर सोचने लगता है कि प्रवेश किया जाए या नहीं। और जो आदमी प्रवेश कर चुका है वो सोचेगा, अरे ये तो बहुत जिम्मेदारी से हमको काम लेना पड़ेगा, ये कोई साधारण बात नहीं है। तो खैर, तो आइए हम ये संवाद अभी सुनते हैं, संक्षेप में सुनाएंगे क्योंकि नारद मुनि का प्रवचन काफी लंबा था। सबसे पहले हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज उनको प्रश्न करते हैं। गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन चांजसा याया देवर्षे ब्रूहि मादृशो गृह मूढ़दीः। हे नारद मुनि, आपने पहले ही संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम इन सब का वर्णन किया है और बताया है कि इन तीन आश्रमों में मनुष्य जीवन की सिद्धि आसानी से प्राप्त हो सकती है। तो यही पदवी मतलब यही गति गृहस्थ आश्रम में कैसे प्राप्त हो सकती है? गृहस्थ एताम पदवीन विधिना येन च अंजसा। वो कौन से विधि विधानों का पालन करना चाहिए, किस तरह से जीवन जीना चाहिए, ताकि व्यक्ति जो गृहस्थ है वो भी मुक्ति के पथ को प्राप्त कर सके। और खास करके है नारद मुनि, उन व्यक्तियों के लिए मादृशो गृह मूढ़ धी, मूढ़ धी मतलब बुद्धि, मूढ़ मतलब मूर्ख, गृह मतलब घर में रहने वाले। खास करके जो घर में रहने वाले, मतलब जो गृह से बहुत आसक्त हैं और घर से बाहर या अपने कुटुंब परिवार धन इत्यादि के बाहर को जानते ही नहीं हैं, जिनकी बुद्धि केवल संसार के तक सीमित है, भगवत चेतना बिल्कुल नहीं है, अल्प बुद्धि वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए खास करके बताइए। और उनमें से मैं भी हूं मादृशो, ऐसा कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि मेरे जैसे अल्प बुद्धि वाले लोगों को, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, हम लोगों के लिए समसिद्धि का मार्ग क्या हो सकता है। अब देखिए, युधिष्ठिर महाराज महान भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के नित्य पार्षद हैं, लेकिन भक्त के गुण ये होते हैं कि वो हमेशा नम्र होते हैं, अपने आप को तुच्छ समझते हैं। इसलिए युधिष्ठिर महाराज बड़ी नम्रता से अपने आप को मूर्ख समझ रहे हैं। हमें नहीं सोचना चाहिए कि युधिष्ठिर महाराज मूर्ख है, वो कह रहे हैं नम्रता से, लेकिन हैं बड़े बुद्धिमान। युधिष्ठिर महाराज तो सबको प्रवचन देने के लिए योग्य हैं, सबको उपदेश करने के लिए योग्य हैं, परंतु हम सबके लिए वो जिज्ञासा कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसके जवाब में आइए देखते हैं नारद मुनि कैसे कैसे जवाब देते हैं। इसमें से कई चीजें हैं, आप में से जिनके पास कागज और कलम है, आप एक 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 करके पॉइंट नोट करते जाइएगा, फिर घर में ख्याल से रखिए और इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए कि गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए। श्री नारद उवाच, गृहेशवस्थितो राजन् क्रियः कुर्वन् यथोचिताः वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासीत महामुनीन्। हे राजन्, गृहेषु अवस्थितः, जो गृह में स्थित हैं, मतलब जो गृहस्थ लोग हैं, क्रियः कुर्वन् यथा उचितः, जितना उचित है उनको अपनी आमदनी कमाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये पहली बात वो बताते हैं, गृहस्थ आश्रम में कर्तव्य क्या है, व्यक्ति को अपने भरण पोषण के लिए कोई कार्य करना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वो आगे चल के देखेंगे। लेकिन पहली बात क्या है कि उसको अपने कुटुंब के भरण पोषण के लिए जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। यथा उचित मतलब जो बिल्कुल उसके लिए सही है, उपयुक्त है उसके लिए, ऐसे कार्य करना चाहिए जो उसको शोभा देता है, जो उसके गुणों के, उसके मतलब उसके योग्यता के अनुसार है, ऐसे काम करना चाहिए जो उसके भलाई के लिए है, यथा उचित। इसलिए गुरु, साधु, शास्त्र, इन तीनों की सहायता व्यक्ति को लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मन घड़ित ढंग से कोई निर्णय ले। एक बार एक व्यक्ति कोई मान लीजिए दुकान खोलता है, सोचता है अगले दिन कि मैं पायलट बनूंगा, तीसरे दिन कोई और सोचता है, नहीं, मन घड़ित ढंग से इधर उधर नहीं सोचना, गुरु साधु शास्त्र के हिसाब से सोचना चाहिए और ऐसे धन कमाना चाहिए जिससे कि दूसरों को कष्ट नहीं हो, दूसरों को धोखा नहीं पहुंचे, दूसरों के खून पसीने को चूस कर नहीं जो हमारी आमदनी मिल जाए, मतलब ईमानदारी की कमाई। हां, आजकल क्या है कि शत प्रतिशत ईमानदार होना भी आजकल व्यवसाय में बहुत कठिन हो गया है। हर आदमी आके घूस मांगता है, कितने सारे तकलीफ है। हम जो भक्त है, व्यापारी है, आके सुनाते रहते हैं ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। तो हमें तो ये सब नहीं मालूम, लेकिन जितना हो सके व्यक्ति को ऐसे सीधे रास्ते पे चलना चाहिए, बिना वजह इधर उधर के अपने आप के ऊपर संकट मोल लेना, कोई टेढ़े मेढ़े रास्ते उतारना, फिर बाद में कष्ट, चिंता, नींद हराम हो जाती है, गोलियां लेने पड़ती हैं। सीधे रास्ते में हमें चलने का प्रयास करना चाहिए, आगे भगवान की इच्छा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, व्यक्ति को अपने भरण पोषण के लिए कार्य करना चाहिए, जिम्मेदारी को त्याग कर आलसी नहीं बनना चाहिए, जिम्मेदारी को त्याग कर ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो अपने पास बहुत धन है, हम अभी आराम से बैठेंगे और सोएंगे। नहीं, कुछ कार्य करना चाहिए, भले पैसे कमाने के लिए नहीं हो, अगर पैसे भी बहुत हो व्यक्ति के पास, फिर भी किस तरह के कार्य करने चाहिए। कोई तो अपने गुणों के हिसाब से जो योग्य कार्य है उसमें व्यक्ति को लगना चाहिए, लेकिन किस उद्देश्य से कार्य करना चाहिए, किस चेतना से करना चाहिए, ये इसी श्लोक में आगे बताते हैं। क्या बताते हैं नारद मुनि? वासुदेवार्पणम साक्षात उपासीत। हमें भगवान वासुदेव, ये दूसरा पॉइंट है कि गृहस्थ को चाहिए कि वो भगवान वासुदेव या श्री कृष्ण की उपासना करे। कैसे करे? अपने कर्मों के फल को उनके चरणों में अर्पण करके। वासुदेव अर्पणम साक्षात उपासीत। वासुदेव अर्पणम, कृष्ण अर्पणम अस्तु। तो इस प्रकार से शास्त्रों में बताया जाता है कि गृहस्थ का सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वो भगवान श्री कृष्ण को अपना आश्रय बनाए और उनको पूरी तरह से संतुष्ट करने का प्रयास करे। ये गृहस्थ आश्रम में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं, यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, जो भी कुछ तुम मेरे लिए करते हो, जो भी तुम खाते हो, पीते हो, दान में कर देते हो, तपस्या करते हो, सब कुछ मेरे लिए करो। आप सब ने बचपन से वो प्रार्थना की होगी, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, बोलते है ना। लेकिन वो केवल विवाह में, ऐसे अनुष्ठानों में समर्पयामी कहके स्वाहा, कहके हम भी स्वाहा हो गए, मुक्त हो गए, ऐसे नहीं। वो वाकई में होना चाहिए ऐसे। हमारे कार्यों को हमें भगवान के चरणों में हमें अर्पण करना चाहिए। तो ये हम कहां से जान सकते हैं? ये तीसरी बात, गृहस्थ का तीसरा कार्य, वासुदेव अर्पणम कैसे किया जाए, वासुदेव अर्पणम का विज्ञान क्या है, ये हमें किन से सीखना चाहिए? महामुनीन। महामुनि मतलब जो महान भक्त हैं भगवान के। जैसे अगर किसी मालिक को प्रसन्न करना है तो उसके दास को, उसके सेवक को पूछना चाहिए कि मालिक को कैसे प्रसन्न किया जाए, उनको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। डायरेक्ट जाके मनगढ़ंत ढंग से हम अगर सोचेंगे कि शायद मालिक को ये अच्छा लगता है, तो हो सकता है मालिक को नाराज करें, प्रसन्न नहीं करें। इसलिए भक्तों के संग में आकर हमें समझना चाहिए कि कैसे वासुदेव अर्पणम करना चाहिए। मनगढ़ंत ढंग से करेंगे तो कोई गलती कर बैठेंगे। वो छोटी सी कहानी आपने तो सुनी होगी कि एक ब्राह्मण के पास वो कुरमुरा था, चुरमुरा खाने वाला था, लेकिन हवा आ गया और कुरमुरा को उड़ा दिया, और जब उड़ गया तो क्या कहने लगा वो? कृष्ण अर्पणमस्तु। भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिया। वायुदेव ले गए जबरदस्ती, इसलिए अर्पण कर दिया चलो। जैसे मान लीजिए हमारे घर से कोई चोरी हो गई, और फिर जब चोरी हो गई हमने कृष्ण मंदिर को दान नहीं दिया, चोरी हो गई और फिर हमने कहा कृष्ण अर्पणमस्तु, ऐसे नहीं चलेगा। तो हमें सीखना चाहिए कि किस तरह से करना चाहिए, और इसके लिए हमें भक्तों के संग की आवश्यकता है। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि गृहस्थ को चाहिए कि वो भक्तों के संग में आकर सीखे वासुदेव अर्पणम का विज्ञान, और किस तरह से संग करना चाहिए ताकि हम ये विज्ञान सीखें। ये चौथा पॉइंट हो गया। तो आइए सुनते हैं नारद मुनि क्या बता रहे हैं। श्रृण्वन् भगवतो भीक्ष्णम् अवतार कथामृतम् श्रद्धानो यथा कालम् उपशांत जनावृतः। श्रृण्वन् हमें सुनना चाहिए, भगवतो अवतार कथामृतम्, भगवान के अनन्य अवतारों के कथा का अमृत हमें सुनना चाहिए। श्रृण्वन् भक्तों के संग में जाकर सिनेमा के बारे में इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। यहां स्पष्ट रूप से नारद मुनि कहते हैं श्रृण्वन् भगवतो अवतार कथामृतम्, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं जो होती हैं वो अमृत के समान होती हैं। और जैसे जैसे व्यक्ति इनको सुनते जाता है ज्यादा से ज्यादा मीठे और मधुर लगने लगते हैं। भले पहले इसमें कोई रुचि न हो, भले पहले नींद आती हो, लेकिन धीरे 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 से जैसे हम भक्तों के संग में आते रहते हैं वैसे वैसे रुचि आने लगती है, और समझ में आता है कि वास्तव में ये अमृत है। और कैसे सुनना चाहिए? श्रद्धाना, बिल्कुल श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति भावना से, बड़े आदर पूर्वक श्रवण करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कथा सुनते समय सो रहा है तो यह आदर पूर्वक होता है? नहीं। मान लीजिए आप किसी बड़े आदमी के दफ्तर में गए हैं आपके कोई काम से, और उनके सामने बैठकर वो आपसे कुछ बोल रहे हैं, आप सो गए। हम कोई बड़े मंत्री हैं, आपका कोई काम है, आप उनको मिलने जाते हैं, मंत्री जी मेरा ये काम है आप करके दीजिए, और वो आपसे बात कर रहे हैं या कुछ पूछ रहे हैं और आप उनके सामने बैठ के सो गए, तो क्या सोचेंगे? अरे ये तो मेरा अपमान कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान कथा के रूप में अवतार लेते हैं। कृष्ण कथा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ये जो वाणी है भगवान कृष्ण की लीला और उपदेश के, ये वाणी में और भगवान में कोई अंतर नहीं। शब्द ब्रह्म ये भी आध्यात्मिक वाणी है, इसलिए जब आध्यात्मिक वाणी चल रही है तो हमें बड़े आदर पूर्वक श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए, सेवन करना चाहिए ऐसे। और आगे नारद मुनि बताते हैं अभीक्षणम, मतलब बार बार सुनना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक बार सुन लिया और फिर 10 दिन हमने नहीं सुना, ऐसा नहीं कि हमने एक बार भगवद गीता पढ़ लिया, भगवद गीता हमने सुन लिया तो दोबारा नहीं सुनना है, नहीं, बार बार सुनते रहना। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि उनको स्मरण आता है कि केवल 50 साल पहले जब वो युवक थे, मतलब जब ये उन्होंने तात्पर्य लिखा उसके 50 साल पहले जब वो युवक थे, तो उनको याद है कि बंगाल के गांवों में और कलकत्ता के शहर के भी बाहर के इलाकों में प्राय रोज लोग एकत्र होते थे श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए, शाम को या तो फिर कम से कम रात को सोने के पहले। हर गांव में ऐसी प्रथा थी। इसकी वजह से क्या होता था कि सारे लोगों को आध्यात्मिक पोषण भरपूर मिलता था। हर शाम को कृष्ण कथा सुनते थे, संकीर्तन करते थे, फिर घर में जाते थे। देखिए ये है आदर्श जीवन। कितना अच्छा जीवन, दिन में अपना काम करो, अपना व्यवसाय संभालो, शाम को आ जाओ, भक्तों के संग बैठो, भजन कीर्तन करो, कुछ कथा सुनो, घर में जाओ, प्रसाद ले लो, सो जाओ, फिर से जल्दी सुबह उठकर अपने कार्य शुरू करो। कितनी अच्छी बात है, सरल बात है। लेकिन आजकल जीवन कैसे हो गया है, काफी कुछ बदल गया है। आजकल लोग इतना परिश्रम करते हैं अपने व्यवसाय में, अपने नौकरी में या जो भी है, कि उनको भगवान के लिए बिल्कुल समय ही नहीं मिलता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि व्यक्ति को 8 घंटे से ज्यादा परिश्रम नहीं करने की आवश्यकता पड़नी चाहिए। 8 घंटा ईमानदारी से परिश्रम करो, बहुत काम करो 8 घंटे, और उसके बाद में जो समय है वो भगवान के लिए दे दो। लेकिन आजकल हम देखते हैं जीवन का संघर्ष इतना बढ़ गया है कि लोग 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे काम करते हैं। बंबई शहर में हम देखते हैं कि रोज नौकरी के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहां तक कि सूरत से, पुणे से लोग रोज आते हैं, 4, 4.5 घंटे का की यात्रा होती है। रोज सुबह 4, 4.5 घंटे आना, मतलब वो ट्रेन का प्रवास है, उसके घर से स्टेशन, स्टेशन से फिर ऑफिस, वो अलग, फिर ट्रेन के लिए इंतजार करना, ट्रेन कभी लेट हो गई, मतलब 5 घंटे आना, 5 घंटे जाना, कितने घंटे हो गए, 10 घंटे। और दफ्तर में मालिक कम से कम कितने घंटे काम कराएगा, कम से कम 8 घंटे, ज्यादा से ज्यादा बोलेगा ये काम है, वो काम है, बैठो, ये करो, वो करो, 8 से 10 घंटे वहां चले गए। 8 भी समझ लीजिए, कितने घंटे हो गए, 18 घंटे, कितने घंटे रह गए, 6 घंटे। 6 घंटे में वो क्या करेगा, सोएगा, खाएगा, पिएगा, क्या करेगा, यह है जीवन। इस प्रकार का संघर्ष चल रहा है। और अगर किसी को समय मिला भी, आजकल जैसे शहरों में लोगों को समय मिलता है तो क्या करते हैं, यहां कोई कमी नहीं है, सामने भी इधर दिखाई पड़ते हैं, क्या करते हैं, बैठ के दूसरे प्रकार का अमृत का सेवन करते हैं, सोचते हैं कि यह अमृत है, समय उधर बर्बाद करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, जीवन बर्बाद करते हैं, या तो फिर कोई सिनेमा हॉल में जाते हैं, कोई होटल में जाते हैं, या तो किसी के साथ बैठ के गपशप करते रहते हैं, या तो घर में बैठ के टीवी देखते हैं। मतलब मनुष्य जीवन की पूरी बर्बादी, पूरा व्यर्थ गवाना ये मूल्यवान मनुष्य जीवन का समय। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वो समय निकाले भगवत कथा सुनने के लिए। केवल परिश्रम करना यह मनुष्यों के लिए योग्य नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि मनुष्यों को आलसी बनना चाहिए। परिश्रम कोई बुरा शब्द नहीं है मनुष्य के लिए, अच्छा है, मनुष्य को परिश्रम करना चाहिए, लेकिन सही सीमा के भीतर, सही उद्देश्य से। श्रीमद् भागवत में ऋषभदेव महाराज कहते हैं, नायम देह देह भाजान रिलोके कष्टान कामान अरहते विड़भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धयेद यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। वो कहते हैं कि हे मेरे पुत्रों, जरा गौर से सुनो, ये जो भौतिक देह है, न अवम देह देह भाजाम रिलोके, जिस व्यक्ति को एक मनुष्य देह मिला है इस संसार में, कष्टान कामान अरहते विड़भुजाम ये, उसे ऐसे दिन रात संघर्ष नहीं करना चाहिए, केवल ऐसे कोई इंद्र तृप्ति के लिए जो मल खाने वाले पशु के लिए भी उपलब्ध है, उसे ज्यादा समय भगवत प्राप्ति के लिए लगाना चाहिए, दिव्य तपस्या करनी चाहिए, जिससे कि उसे ब्रह्म सुख, मतलब भगवान की सेवा का सुख मिल सके। तो कम से कम यहां पर बेलगाम में इतना तो संघर्ष नहीं करना पड़ता जहां तक हम जानते हैं। आप में से किसी को 4 घंटा आना जाना पड़ता है, इतना तो कोई नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा किसी को आधा घंटा, 1 घंटा लगता होगा यहां। ठीक है, दफ्तर में व्यवसाय में 10 घंटे लगते होंगे, फिर भी कितना समय बचता है। इसलिए यहां पर मंदिर है, आप मंदिर का लाभ ले सकते हैं, रोज आप यहां आ सकते हैं, कोई कठिनाई की बात नहीं है। अगर कोई व्यवसाय की बात होती तो लोगों को आ जाना ही पड़ता। तो ऐसा ही समझना चाहिए हमें कि मंदिर में आना भी हमारे लिए इतना ही महत्वपूर्ण है जैसे कि पैसे कमाकर जीना। पैसे कमाने के लिए जब अपने भरण पोषण पेट का सवाल होता है तो व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, सही बात है ना? कहां घूमता है, कितना परिश्रम करता है। तो अपने आत्मा के भरण पोषण के लिए भले हम क्यों रोज मंदिर में नहीं आ सकते हैं, हम क्यों सत्संग में नहीं आ सकते, हम भगवान का नाम जाप करने के लिए क्यों नहीं आ सकते हैं मंदिर में, भले थोड़े समय के लिए क्यों ना हो, भगवान का दर्शन करने के लिए। तो हमें कोशिश करना चाहिए। देखिए, जब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत का प्रवचन दिया था तो बहुत सारे ऋषि मुनि वहां एकत्र हुए, और ये सारे ऋषि मुनि न केवल उस इलाके से आए थे, दूर दूर से आए थे। और यहां तक बताया गया है श्रीमद् भागवत में कि ब्रह्मांड के कोने कोने से भी ऋषि मुनि आए, कोई महर लोक से, कोई जन लोक से, कोई तप लोक से। अब हमें तो महर लोक जन लोक से नहीं जाना आना है, पास में बेलगाम शहर भी ज्यादा बड़ा नहीं है, तो क्यों ना हम इस मंदिर का फायदा उठाएं। यहां सत्संग है, उपलब्ध है, तो हमें इसका ज्यादा लाभ उठाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। क्योंकि आजकल जो वातावरण है, घरों में भगवान का नाम का जप करना, कीर्तन करना बहुत मुश्किल है। सब जगह टीवी चालू होता है, नाना प्रकार के बाधाएं आती हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा यहां आने का प्रयास करें। नारद मुनि यहां शब्द का प्रयोग करते हैं यथा कालम, मतलब जैसे सुविधा हो आपको वैसे उस समय आप आ सकते हैं। शाम को हो सकता है शाम को आइए, सुबह अच्छा लगता है सुबह आइए, लेकिन करना चाहिए। तो ये है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है कि हमें बार बार अभीक्षणम, बार बार भक्तों के संग में आकर भगवान की कथा श्रद्धा भाव से आदर पूर्वक श्रवण करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण, ये सार है सारे धर्म का, खास करके इस कलयुग में। पांचवा पॉइंट, गृहस्थ को चाहिए कि इस प्रकार से भक्तों के संग में आकर वो धीरे 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 से अपने कुटुंब से, अपने घर से, अपने धन से, समाज में जो अपना पद है उससे वो निरासक्त हो जाए, विरक्त हो जाए। सत्संगाशन कै संगम आत्मजायात्मजादिषु विमुंचेन मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्न भवत उत्थितः। सत्संगात शन कै, सत्संग में आने के बाद शनै शनै, शनै कही मतलब शनै शनै, धीरे धीरे से। संगम जो आदि आसक्ति है किसके साथ, आत्मा अपने शरीर से, जाया अपने पत्नी से या तो फिर पति से। और फिर यहां बताया जाता है जो आदिशु, मतलब अपने से जो जन्म लेने वाले, मतलब अपने बच्चे, अपने पति पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने घर से इत्यादि। क्या करना चाहिए, विमुंचेन, धीरे धीरे से विरक्त होते रहना चाहिए। कैसे विरक्त होना चाहिए, बहुत सुंदर उदाहरण दिया यहां नारद मुनि ने, स्वयं स्वप्नवद उत्थितः। जैसे एक आदमी स्वप्न से जागृत होता है, जब आदमी सोता है कभी कभी स्वप्न देखता है, स्वप्न में उसे लगता है कि अरे मैं कोई सचिन तेंदुलकर के साथ में बैठ के बात कर रहा हूं, या मैं अमिताभ बच्चन के साथ में मैं किधर घूम रहा हूं गार्डन में। और जब जाग जाता है तो देखता, अरे ये तो सब नष्ट हो गया, इसमें कोई सत्य नहीं है, ये तो केवल स्वप्न था। तो ठीक उसी प्रकार से यहां जो हमारे जीवन में जो भी संबंध हैं, हमारा कुटुंब, हमारा धन, हमारा व्यवसाय, हमारा समाज, हमारा जो इज्जत है इस समाज के अंदर, ये सब कुछ जो है ये एक स्वप्न है। और ये स्वप्न कब टूटेगा, कब टूटेगा? मृत्यु के समय, मृत्यु के समय ये स्वप्न टूट जाएगा। पिछले जन्म में हमारे कौन सा कुटुंब था, कौन से समाज में हमें जन्म लिया था, कितना धन था, कौन हमारे पति पत्नी बच्चे भाई बहन माता पिता थे, वो किसी को याद है? नहीं। कहां गया वो स्वप्न? टूट गया। जब पिछले जन्म में मृत्यु हो गई, वो स्वप्न टूट गया। चाहे वो सूक्ष्म स्वप्न हो या स्थूल स्वप्न हो, जब सोते समय हम सपना देखते हैं वो सूक्ष्म स्वप्न है, और जागते जागते जो हम स्वप्न देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में वो स्थूल स्वप्न है। लेकिन चाहे वो सूक्ष्म स्वप्न हो या स्थूल स्वप्न हो, आखिर में क्या है? अस्थाई है, क्षणभंगुर है, मिथ्या है, सब आज है कल नहीं। जैसे बादल की तरह आज है चला गया, थोड़े समय बाद वो बादल नहीं दिखाई देता, ऐसे है ये सारी चीजें। तो भक्तों के संग में आकर संसार से धीरे धीरे से विरक्ति बढ़ानी चाहिए, और भगवान कृष्ण के प्रति जो आसक्ति है वो बढ़ाने चाहिए। दो चीजें बढ़नी चाहिए भक्तों के संग में आकर। कौन सी दो चीजें? पहली बात अभी भी बताया, हाँ, एक क्या बढ़ना चाहिए? भगवान के प्रति प्रेम बढ़ना चाहिए, आसक्ति बढ़नी चाहिए। और दूसरा क्या बढ़ना चाहिए? संसार के प्रति विरक्ति वो बढ़नी चाहिए, निरासक्त होने की भावना वो बढ़नी चाहिए भक्तों के संग में आकर। तो ये हमारा थर्मामीटर है, हम किस तरह से भक्तों का संग का लाभ ले रहे हैं, क्या ये दोनों चीजें बढ़ रही हैं कि कम हो रही हैं। तो ये पांचवा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है ये, और आगे चल के छठा पॉइंट बताने वाले हैं शुकदेव गोस्वामी। यावदर्थमुपासीनो देहे गेहे च पंडितः विरक्तो रक्तवत्तत्र नृलोके नरतान्यसेत। जब विरक्ति की बात कर रहे हैं तो नारद मुनि आगे बताते हैं, विरक्तो, हाँ विरक्त होना चाहिए, लेकिन रक्तवत्तत्र मतलब उसे ऐसे रहना चाहिए, अपने आप को दूसरों के सामने या समाज के सामने सबके सामने ऐसे पेश करना चाहिए मानो कि वो बहुत आसक्त है। मतलब अंदर से निरासक्त लेकिन बाहर से ऐसे कार्य करना कि दूसरों को समझ में आए कि ये तो बहुत आसक्त है। कोई बताएंगे क्या करना चाहिए? छठा पॉइंट क्या है व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कोई बताइए, अभी अभी जो कहा। मन से विरक्त होना चाहिए, विरक्ति मन से विरक्ति को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन अपनी कृति में ऐसे लगना चाहिए कि ये बिल्कुल आसक्त है जैसे दूसरे संसारी लोग हैं, ऐसे ही लग रहा है। जैसे अर्जुन और दुर्योधन दोनों युद्ध कर रहे थे, बाहरी रूप से देखा जाए तो दोनों एक समान लग रहे थे, दोनों तीर धनुष चला रहे हैं, सारे नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र चला रहे हैं, रथ के ऊपर सवार होकर धुआंधार युद्ध कर रहे हैं, दोनों एक समान लग रहे हैं कि, लेकिन क्या एक समान है? जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। क्यों? क्योंकि दुर्योधन असुरी प्रवृत्ति के थे और अर्जुन दैवी प्रवृत्ति के थे, क्योंकि अर्जुन जो भी युद्ध कर रहे थे वो भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार उनके संतुष्टि के लिए कर रहे थे, दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के आदेश के विरुद्ध कर रहे थे। तो बाहरी रूप से कहना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो भक्त को चाहिए, खास करके जो गृहस्थ आश्रम में हैं, कि अंदर से विरक्ति की भावना जागृत करने का प्रयास करें और बाहर से ऐसे अपने आप को पेश करें कि मानो वो आसक्त हैं। फिर सातवां पॉइंट यहां नारद मुनि बता रहे हैं, यावद अर्थम उपासीनो देहे गेहे च पंडितः। जो वास्तव में पंडित व्यक्ति है, जो वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति है, वो क्या करता है, यावद अर्थम उपासीनो, केवल इतना ही धन का अर्जन करता है जितना कि अपने भरण पोषण के लिए आवश्यक है। बस आत्मा और शरीर को बनाए रखने के लिए जितना आवश्यक है उतना, बस जरूरत से ज्यादा नहीं कि ज्यादा से ज्यादा कमाओ, ज्यादा से ज्यादा खाओ, नहीं। अत्याहार प्रयासश्च, भक्ति विनश्यति। ये अति आहार, जरूरत से ज्यादा खाना, जरूरत से ज्यादा पैसा इकट्ठा करना, प्रयास, जरूरत से ज्यादा प्रयास करना, बहुत परिश्रम करना अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, अपने नौकरी में कुछ प्रमोशन लाने के लिए, अति प्रयास, अति आहार, ये भी सब रजगुण और तमगुण के लक्षण हैं, भक्ति के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि बिल्कुल साधारण जीवन जिए और चीजों के लिए बिल्कुल वो तड़पे नहीं, अरे मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, पड़ोसी के घर में इतना बड़ा टीवी है, हमको भी लाना चाहिए, उनके घर में नई गाड़ी आ गई, हमारे घर में अभी तक पुरानी गाड़ी है। आजकल ये सब जगह, ये जो स्पर्धा की भावना है, सब जगह फैली हुई है। सब लोग अपनी आवश्यकताओं को नहीं देखते हैं, दूसरों के पास क्या है वो देखते हैं। अगर दूसरे के पास कुछ भी हो, भले हमारा वो कोई काम का हो या नहीं, हमें भी चाहिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि ऐसे हमें समाज में स्टेटस, कुछ हमारा पद होता है, उसको हमें बनाए रखना चाहिए। देखिए कितने कितने स्वप्न हम बना लेते हैं, कितने बड़े बड़े स्वप्न हम देखते हैं, कितने हवा महल खड़ा कर देते हैं हम, और इस वजह से कितना कष्ट होता है लोगों को। तो अपना जीवन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सरल जीवन, ऊंचा विचार। जितना साधारण अपने जीवन को हम करेंगे, उतना ज्यादा हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। अगर कोई गृहस्थ सोचता है कि अरे मैं अगर मेरा जीवन सरल बनाऊंगा तो फिर पेट का क्या होगा, मैं अगर दुकान चला रहा हूं तो मेरे ग्राहकों का क्या होगा, वो कैसे आएंगे, अगर मैं कोई दफ्तर में काम कर रहा हूं मुझे प्रमोशन कैसे मिलेगा, मुझे इंक्रीमेंट कैसे मिलेगा, तो हरेक व्यक्ति सोचता है। लेकिन प्रभुपाद समझाते हैं कि हरेक भक्त को विश्वास होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण हरेक भक्त को उसकी आमदनी देते हैं। अगर आप कोई व्यापारी हैं तो आपके ग्राहक भगवान भेजेंगे आपके पास, आप कोई डॉक्टर हैं तो आपके पेशेंट मरीज जो हैं भगवान भेजेंगे आपके पास, भगवान की योजना से आपका पेट भरने वाला है, न केवल आपके प्रयास से। भगवान सबका पेट भरा रहे हैं, पशुओं का, प्राणियों का, पक्षियों का, कीड़ों का पेट भर रहे हैं, तो अपने भक्तों का क्यों नहीं भरेंगे पेट। इसलिए भक्त को चाहिए कि भगवान के ऊपर श्रद्धा रखे, विश्वास रखे, अपने जीवन को सरल बनाकर ज्यादा से ज्यादा समय अगर वो भक्ति में लगाए तो भगवान सारी व्यवस्था कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय में घोषणा तो कर ही दी है, कौन सा श्लोक बताया उन्होंने, अनन्या चिंतयंतो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन मनन करता है, श्रद्धा पूर्वक मेरा स्मरण करता है, मेरी सेवा करता है, उपासना करता है, तो उसके जीवन में जो भी कमी है मैं उसको पूरा कर दूंगा और जो उसके पास है उसको मैं सुरक्षित रखूंगा। योगक्षेम वहामि अहम्। मैं व्यक्तिगत रूप से आकर मेरे भक्त का संरक्षण करूंगा। भगवान इतना आश्वासन देते हैं तो भक्त को क्यों संशय करना चाहिए। सरल जीवन बिताकर भगवान का भजन के लिए समय निकालना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हुआ है कि समाज में हम सब ने, मतलब मनुष्य जाति ने, जीवन को इतना कठिन और टेढ़ा मेढ़ा बना लिया है कि कोई भी सरल जीवन जी नहीं सकता है। आजकल जीना भी हो तो हजार लोग आते हैं बीच में कुछ बोलने के लिए। इसलिए भक्त को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वो भक्तों के संग में आकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाए और इस बात में बिल्कुल दृढ़ रहे कि दुनिया चाहे जो करे, पड़ोसी के पास कितने टीवी आए कोई परवाह नहीं, लेकिन हमारे घर में टीवी की जरूरत नहीं है। यह श्रद्धा होनी चाहिए, फिर अपना जीवन सुखी हो सकता है। क्या यह है कि जितना बड़ा टीवी आएगा उतना ज्यादा सुख हमें मिलेगा, है क्या? ऐसा नहीं है, उल्टा ज्यादा दुख बढ़ेगा। इसलिए हमें केवल सुख हमारा यहां प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में। यह हुआ सातवां पॉइंट। अब आया आठवां पॉइंट। और जब तक आमदनी की बात आती है, हमें याद रखना चाहिए कि आमदनी का सवाल ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल नहीं है मनुष्य के लिए। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या नहीं है कि हमारी आमदनी कितनी आएगी, कितना पैसा आएगा महीने में। सबसे बड़ी समस्या क्या है हम सबके लिए? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि हम जन्म मृत्यु के चक्र में अटके हुए हैं। अनादि काल से हमने नाना योनियों में भ्रमण करके अब मनुष्य योनि प्राप्त की है और अब हमें भगवान का भजन करके इस समस्या से हमेशा के लिए मुक्त होना चाहिए। इसलिए ज्यादा आमदनी की ओर परवाह न करते हुए इस समस्या का हल करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए हमेशा के लिए, ताकि आगे कोई समस्या नहीं हो। यह है बुद्धि। इसलिए यहां पर नारद मुनि आगे कहते हैं, एक बार आपने जीवन सरल कर दिया, आपको निष्ठा हो गई कि हमारा जीवन सरल करना है। लेकिन समस्या क्या होती है कि आपके जैसे सोचने वाले लोग आपकी इर्द गिर्द बहुत कम होते हैं, है कि नहीं? लोग क्या बोलते हैं, अरे बस इतना ही कमाते हो, अरे तुम तो ये हो, इतने योग्य हो, इतना कमा सकते हो, देखो वो कितना कमाता है, अरे तुम क्या इतना ही कमाते हो, अरे तुम्हारे पास देखो घर में कुछ नहीं, सोफा नहीं, सोफा कम बेड नहीं, बड़ा टीवी नहीं, कुछ नहीं, अरे क्या करते हो, कुछ करो। कोई और बोलेंगे, अरे कुछ हो के दिखाओ समाज में, कुछ करना चाहिए, नंबर वन होना चाहिए। तो नाना प्रकार के लोग अपने बुद्धि से आके उपदेश देते हैं बिन बुलाए, क्योंकि क्या है, उपदेश देना मतलब मुफ्त है ना, देने में कोई हरकत नहीं है। तो उपदेश देने वाले लोगों की कमी नहीं होती है किसी यहां समाज में। आप इस बात से सहमत हैं, सही है कि नहीं? आपको पास भी बहुत लोग आते हैं उपदेश देने के लिए कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये लोगों की आदत है। तो इस समस्या के बारे में क्या करना चाहिए गृहस्थ को, आइए नारद मुनि से सुनते हैं। बड़े दक्ष निपुण है नारद मुनि, तो उनसे सुनने से सारे समस्याओं का समाधान हो जाता है। ज्ञातयः पितरौ पुत्रा भ्रातरः सुहृदौ परे यद्वदन्ति यदिच्छन्ति चानुमोदेत निर्ममः। ज्ञातयः, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमसे नातेवाईक पौने, पितरों मतलब माता पिता, पुत्र मतलब हमारे बच्चे, भ्रातरह हमारे भाई बहन, सुहृदो हमारे मित्र, अपरे मतलब और अन्य बहुत सारे होते हैं ना, पड़ोसी वो सब बहुत होते हैं। यद वदन्ति यद इच्छन्ति, उनके इच्छा के अनुसार हमें बोलते रहते, उपदेश देते रहते हैं, बहुत सारा, अरे इतना मत कमाओ और अच्छी नौकरी लो और बिजनेस को बढ़ाओ, ऐसे करो वैसे करो। तो हमें क्या करना चाहिए? च अनुमोदत निर्ममः। नारद मुनि कहते हैं निर्मम, ज्यादा सीरियसली मत लेना उनकी बातें, ज्यादा गंभीरता से मत लेना। मतलब क्या करना? एक कान से अंदर, एक कान से बाहर। और क्या करना चाहिए? अनुमोदित। तो नारद मुनि कहते हैं हाँ हाँ आप जो कह रहे हैं सही है, ऐसा बोलना उनको। आपका जीवन आप सरल बनाना चाहते हैं, कोई आपको उकसाते रहते हैं, अरे इतना क्यों कमाते हो, और कमाना चाहिए। उनको क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? सही सही, बराबर, सही बोला आपने, ऐसे ही करेंगे हम। और फिर जो अपने को जो करना है वही करना, जो भगवान ने कहा, भगवान के भक्तों ने कहा, वो हमें करते रहना चाहिए। नहीं तो खाम खा किस किस से झगड़े करते रहेंगे हम? क्यों हमारा समय बर्बाद करें हर ऐरे गहरे से झगड़ा करने के लिए? हमें अपना जीवन सरल बनाना है, जीवन के झंझटों को कम करना है, तो इसलिए किसी से हमें वाद विवाद नहीं करना है। जो आए जो बोले सुन लो, भूल जाओ। ये समस्या बहुत भक्तों के पास साथ होती है, आपके साथ भी होती है। तो क्या बोलेंगे अगली बार आप? हाँ हाँ सही है, सही सही, वे सारे समस्या का समाधान हो जाता है। सही सही बोल के उनकी बात करनी नहीं चाहिए। बात किसकी करनी चाहिए? भगवान की बात करनी चाहिए। इसलिए हमें बिल्कुल दृढ़ रहना चाहिए कि हमें अपना जीवन ऐसे नहीं बनाना चाहिए इतना कठिन, जिससे कि हम अपने जीवन के ध्येय को ही भूल जाएंगे। अनावश्यक अपने जिम्मेदारियों को बढ़ाना, क्यों अपने जिम्मेदारियों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं? जितना है उनको हम बनाए रखें, उतना ही काफी है। प्रहलाद महाराज इसी स्कंद में इसके पहले कहते हैं भारम उद्वहतो विमूढ़ान, कि जो लोग होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, बिना वजह के अपने ऊपर कंधों के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, जहां की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों बढ़ाते हैं ये लोग? माया सुखाय, माया सुख के लिए, इस चपल सुख के लिए। विमुख, भगवान से विमुख हो गए हैं, विमुख चेतसा, क्योंकि वो भगवान से विमुख हो गए हैं, इसलिए संसार के सुख के पीछे जो कि क्षण भंगुर है, इसके पीछे भागते हैं। और फिर ज्यादा से ज्यादा कंधों के ऊपर बोझ ले लेते हैं। और फिर क्या कहते हैं? मंदिर में आने के लिए टाइम नहीं है। नहीं, टाइम निकालना चाहिए, 24 घंटे सभी के लिए है, और इसी में अपने को भगवत प्राप्ति करके भगवान के धाम में जाना है। मृत्यु के सही यमदूत आएंगे और हम बोलेंगे हमारे पास टाइम नहीं था, नहीं चलेगा, यमदूत बांध के ले जाएंगे। तो यमदूत बोलेंगे फिर नरक में बहुत टाइम मिलेगा तुमको, जाओ, बहुत टाइम है तुम्हारा, हम देखो तुम्हारे कर्म कितने, ये पाप किया वो पाप किया, नरक में तो बहुत लंबा टाइम है तुम्हारा, अभी वहां बैठ के जितना चाहे उतना भजन करो, बहुत टाइम मिलेगा। तो अपने को यमदूतों का चेहरा नहीं देखना चाहिए, किनका चेहरा देखना चाहिए? विष्णु दूतों का, ताकि हम भगवान के धाम में लौटकर चले जाएं। फिर नारद मुनि आगे बात बढ़ाते हैं, नौवा पॉइंट, दिव्यं भौमं चांतरिक्षं वित्तं अच्युत निर्मितं तत्सर्वं उपयुञ्जान एतत् कुर्यात् स्वतो बुधः। हमें केवल ज्यादा से ज्यादा जहां तक हो सके ऐसे पदार्थों का उपयोग करना चाहिए जो कि दैव से आता है, प्रकृति से आता है, निसर्ग से आता है, ज्यादा से ज्यादा। हाँ, आजकल इतने सारे चीजें आ गई हैं, जमाना इतना बदल गया है आजकल, क्या करें। लेकिन नारद मुनि के जो उपदेश हैं बड़े अच्छे हैं हमारे लिए इस काल में भी। नारद मुनि बताते हैं कि तीन प्रकार की चीजें जो है वो नैसर्गिक मानी जाती हैं। पहले तो जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा से क्या उत्पन्न होता है, अनाज, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः। तो अभी सभी लोग कितना चिंतित हैं, बारिश कम हो रहा है क्यों, फिर अनाज नहीं होगा, तो बारिश के ऊपर हम निर्भर हैं। कितने भी बड़े फैक्ट्री हम क्यों नहीं बनाएं, अगर बारिश नहीं हुई तो सारे फैक्ट्री एक न एक दिन बंद पड़ने वाली है, क्योंकि आखिर में फैक्ट्री जो चलाते हैं, जिनमें काम करते हैं, उनको भी तो खाना है ना, अनाज ही खाना है। तो वर्षा से जो उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं वो एक है, गृहस्थ को चाहिए कि वो इनके ऊपर निर्भर रहे। दूसरे पदार्थ हैं भौमम, मतलब जो पृथ्वी से मिलता है, जो सागर से मिलता है, नदियों से मिलता है, इत्यादि खनिजों से मिलता है। पृथ्वी में बहुत कुछ धन है, इसलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं, वसुधा, वसुंधरा, वसुधा या वसुंधरा। वसु मतलब धन, धरा मतलब जो धारण करती है। तो पृथ्वी के अंदर बहुत धन है, पृथ्वी हमारे सारे आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकती है, लेकिन जब मनुष्य पापी बन जाता है तो पृथ्वी माता कुछ नहीं देती है, सब पकड़ के रखती है, देती नहीं है। जब मनुष्य भगवान की भक्ति करने लगता है और मनुष्य समाज में सब जगह भगवत भावना फैल जाती है, तो पृथ्वी माता वो भी भक्त हैं भगवान की, तो वो भी खुलेआम मनुष्य समाज को बहुत धन देती है। और तीसरे जो श्रेणी के पदार्थ हैं जो नैसर्गिक माने जाते हैं, वो है जो दैव से आ जाते हैं अचानक बिन बुलाए। किसी मामा ने हमारे लिए, चाचा ने, मामा ने 1,00,000 रुपए हमारे लिए छोड़ दिया, ठीक है, बिन बुलाया है, हमने तो कुछ परिश्रम नहीं किया उसके लिए, आया तो ठीक है, भगवान का देन समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। और इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा मनुष्य समाज में अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम, ज्यादा से ज्यादा ये आदर्श समाज होगा। लेकिन आज इस आदर्श से हम इतने दूर आ गए हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियों को इत्यादि बनाकर हमारा जीवन इतना कृत्रिम हो गया है, आर्टिफिशियल हो गया है, कि अभी अगर हम कृषि गोरक्ष वाणिज्यम की बात करें कोई सुनता नहीं है। गांव में रहने वाले लोग भी आजकल बहुत कम कृषि में लगते हैं, सब बाहर जाते हैं, क्योंकि कृषि में भी समस्याएं कितनी आ गई। तो मनुष्य समाज के लिए भगवान ने जो योजना बनाई है वो है कृषि गोरक्ष वाणिज्यम। लेकिन क्या करें, आधुनिक काल में जैसी परिस्थिति है उसमें काम चलाना चाहिए, लेकिन कम से कम इतना कर सकते हैं, हम गायों की रक्षा कर सकते हैं, गायों की सेवा कर सकते हैं, अपने भूमि को हम बचा के रख सकते हैं, जिससे कि मनुष्य समाज की अर्थव्यवस्था बड़े अच्छे ढंग से चल सकती है। प्रकृति में, निसर्ग में जो भी भगवान ने दिया है वो भगवान की भेंट है, और इन चीजों का उपयोग हमें सही ढंग से करना चाहिए भगवान की सेवा में। अगर इन चीजों का उपयोग सही ढंग से नहीं करेंगे तो भगवान इन चीजों को छीन लेंगे। तो प्रकृति के ऐश्वर्य को इस्तेमाल करने के लिए व्यक्ति को भक्ति भावना चाहिए। नहीं होगी भक्ति भावना तो इनका दुरुपयोग करेगा, और दुरुपयोग करने की वजह से इसका बहुत घोर परिणाम भुगतना पड़ेगा सारे मनुष्य समाज को। 10वां पॉइंट आप नोट कर रहे हैं, थोड़े भक्त आप में से कितने हो गए, 9 पॉइंट। घर में जाके सबको सुनाएंगे आप। यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वं हि देहिनाम, अधिकम योभिमन्येत सस्तेनो दंडम अर्हति। बहुत महत्वपूर्ण बात यहां भगवान बता रहे हैं। यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वं हि देहिनम, यावत् जितना, भ्रियेत मतलब भरना, जठरम मतलब पेट, हमें पेट को उतना ही भरना चाहिए तावत स्वत्वम ही देहिनाम, हमें उतना ही अपना कहना चाहिए जितना केवल पेट भरने के लिए आवश्यक है। अपना प्रभुत्व या मैंपन जो है उसको केवल इतनी चीजों के ऊपर करना चाहिए जितना कि हमारे पेट भरने के लिए है बस, और अगर इससे ज्यादा करें तो नारद मुनि कहते हैं अधिकम, इससे अधिक अगर हुआ अभिमन्येत, अगर कोई व्यक्ति मानता है कि इससे भी ज्यादा ये मेरा ही है तो क्या होगा, सह स्तेन, वो चोर है। स्तेन मतलब चोर। दंडम अर्हति, दंड प्राप्त करने के लिए योग्य है। कितना कड़क है नहीं। तो नारद मुनि क्या कहते हैं कि हम भले 10 करोड़ रुपए कमा रहे हों लेकिन हमारे पेट भरने के लिए अपने को कितना चाहिए, बहुत कम चाहिए। जो जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति जितना कि हमारे भरण पोषण के लिए चाहिए वो हमारा है, वो हमारा कोटा है, हमारा अधिकार उसके ऊपर है। उससे ज्यादा जो भी है वो किसकी संपत्ति है, भगवान की। वैसे भी दूसरा भी जो है वो भी भगवान की संपत्ति है लेकिन भगवान ने छूट दे दी, ठीक है आपके भरण पोषण के लिए चाहिए ना, चलो ये आपका मान लो, लेकिन इससे ज्यादा जो है वो मेरा है याद रखना, भगवान कहते हैं। और अगर हमने उस चीज को अपना मान लिया और हम भूल गए कि ये भगवान का अधिकार है इसके ऊपर, भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए, तो फिर क्या होगा, सह स्तेनह, फिर ये चोर कहलाता है और उसे दंड मिलना चाहिए। देखिए कितनी, दंडम अर्हति, उसको दंड मिलना चाहिए। आजकल ऐसी विचारधारा कहां मिलती है, कोई है ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार से सोचते हैं, नहीं। आजकल लोग केवल यही सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा धन हम कमाएंगे। ये अर्थव्यवस्था आजकल इतनी कृत्रिम हो गई है, आर्टिफिशियल हो गई है कि हमारे विज्ञान इत्यादि तकनीकी ज्ञान के आधार पर ऐसे ऐसे चीजों को निर्माण किया जा रहा है जिनकी वास्तव में मनुष्य समाज में कोई आवश्यकता नहीं है। एक उदाहरण, टेलीविजन। क्या टेलीविजन के पहले मनुष्य समाज नहीं चल रहा था? क्या चल रहा था ना, चल रहा था कि नहीं, मनुष्य थे ना उस समय भी, खुश थे ना, बल्कि आज से ज्यादा खुश थे। तो अचानक किसी ने टीवी बना लिया, एक दिन उसको कुछ बुद्धि आ गई, बना लिया टीवी। किसी ने कुछ और बनाया, किसी ने टेलीफोन बनाया, किसी ने क्या बनाया। अब इन सब चीजों के पहले भी मनुष्य समाज अच्छा भला चल रहा था, कठिनाई कोई नहीं थी, कष्ट जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो सब समय है, लेकिन वैसे भी लोग खुश थे। तो ये सब जो चीजें हैं संशोधन करके जो लोग निकालते हैं, ढूंढ निकालते हैं, ये आवश्यक चीजें नहीं होती हैं। लेकिन जैसे जैसे इन चीजों का निर्माण किया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि देखो इन चीजों का इस्तेमाल करो, इन चीजों का इस्तेमाल करने से तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। पहले माताएं घर में रसोई घर में बैठ के चक्की चलाती थी, फिर विज्ञापन होने लगे, अभी चक्की भूल जाओ, अभी मिक्सर ग्राइंडर ले लो, देखो केवल बटन लगाओ गुड़गड़ गुड़गड़ गुड़ हो गया, सब मामला खत्म। पहले माताएं घर में इतना काम करती थी कि हट्टे खट्टे रहती थी, चक्की चलाना, फिर दूध का मंथन करना, इससे क्या होता था, काफी कसरत हो जाती थी, एक्सरसाइज हो जाता था शरीर के सारे हिस्से भागों का। लेकिन अभी क्या है, केवल बटन दबाना है, फिर अभी ओवन चालू करना है, गैस चालू करना है, तो क्या हो गया, सबका स्वास्थ्य खराब होते जा रहा है। तो ये सब कृत्रिम चीजों का जो संशोधन करके निर्माण किया जा रहा है, लोगों को एक प्रलोभन दिया जाता है कि आप ये चीज इस्तेमाल कीजिए, आपका जीवन सुधर जाएगा, आप सुखी हो जाएंगे। और इससे क्या होता है, लोग सोचते हैं हाँ हमें खरीदना चाहिए, और खरीदने के लिए क्या चाहिए, धन चाहिए, तो धन के लिए फिर ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। ज्यादा परिश्रम करता है, धन एकत्र करता है, इन चीजों को खरीद लेता है, और फिर इस प्रकार से ये चक्कर बढ़ता रहता है। और इस चीज को क्या कहते हैं? आर्थिक विकास, प्रगति, इसको प्रगति कहते हैं। पहले अगर आपके घर में चक्की थी और आज मिक्सर है, तो लोग कहते हैं कि आपके घर की प्रगति हो गई। अभी क्या गति हुई वो मालूम नहीं, लेकिन लोग कहते हैं प्रगति हो गई। खामखा अच्छे खासे सब थे, हट्टे खट्टे थे, पहले स्वादिष्ट और बनता था, लेकिन आजकल कैसे सब कर दिया है उन्होंने, बड़ा कृत्रिम बना दिया। इसलिए ये आजकल के आर्थिक व्यवस्था ने, अर्थव्यवस्था ने लोगों को बहुत लोभी बना दिया है, और ऐसे करके उन्होंने उनको भगवान भुला दिया है। भगवद गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं दो प्रकार के लोगों के। कौन से प्रकार के दो लोग कोई कह सकते हैं? आसुरी प्रवृत्ति वाले और दैवी प्रवृत्ति वाले। तो आसुरी प्रवृत्ति वालों की विचारधारा क्या होती है, भगवान बड़े सुंदर ढंग से विस्तार में बताते हैं, लेकिन थोड़े शब्दों में यहां संक्षेप में वर्णन करना चाहेंगे। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम, इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। इदम अद्य मया लब्धा, अभी मेरे पास इतना धन है, आगे कल मेरा इतना धन हो जाएगा, क्योंकि मैंने बैंक में रखा है वो 10% मिलेगा, उधर वो दूसरे बिजनेस में रखा है वो बढ़ेगा, कल मेरे पास इतना होगा, उधर से इतना ब्याज मिलेगा, उधर से इतना मिलेगा, तो कल मेरे पास इतना पैसा होगा। तो व्यक्ति इसी दिन में दिन रात यही सोचते रहता है, आज इतना है कल इतना होगा, परसों उतना होना चाहिए, और फिर इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। इस प्रकार से मैं मनोरथम अपनी बुद्धि से अपनी इच्छा अनुसार मेरे धन की वृद्धि करूंगा, मैं पैसे बढ़ाते रहूंगा, मेरा आज मेरे पास इतना है कल इतना होना चाहिए, और फिर जब मैं इस उम्र का हो जाऊंगा मेरे पास इतना होना चाहिए। तो यही हवा महल चलते रहता है दिन भर, यही विचार। व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कृष्ण चिंतन करना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है? पैसे का चिंतन करता है दिन भर, आज इतना कल उतना। असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि, ईश्वर होम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। ये आदमी मेरा शत्रु है, मैं उसको उड़ा दूंगा, वो भी आएगा उसको भी उड़ा दूंगा, क्यों? मैं ईश्वर हूं, ईश्वर हम अहम भोगी, मैं भोगता हूं, सिद्धो हम मैं सिद्ध हूं, मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, मेरा इज्जत है, मैं सुखी हूं, सिद्धो हम अहम सुखी। यह है असुरी प्रवृत्ति, और आजकल इस प्रकार से प्रचार हो रहा है सब जगह, समाज से, रिश्तेदारों से, कुटुंब के भीतर, टीवी से, अखबारों से, उपन्यासों में से, कि आपको भी ऐसे ही बनना चाहिए। हर जगह आप देखेंगे सब बैंक ये वाले सब सोसाइटी वाले सब आपको प्रलोभन देते हैं, 5 साल में पैसा डबल, इतने सालों में पैसा तिगना हो जाएगा। तो ऐसी चीजों के बारे में एक कृत्रिम अर्थव्यवस्था तैयार करके लोगों को उन्होंने पथभ्रष्ट कर दिया है। सभी लोग भगवान को प्राप्त करने का मार्ग भूल गए, सभी लोग पैसे के पीछे 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 भाग रहे हैं। ये आजकल की ट्रेजेडी है। तो नारद मुनि क्या बताते हैं कि केवल जितना हमारे भरण पोषण के लिए वास्तव में चाहिए, उन चीजों को हमें अपना समझना चाहिए, और बाकी चीजों को हमें भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए। 11वां, एक दो पॉइंट बच गए, आपको सुनना है? एक दो पॉइंट, छोटे पॉइंट अभी खत्म कर देते हैं। 11वां पॉइंट नारद मुनि कहते हैं, मृगोष्ट खर मरखाखु सारी सृप खग मक्षिशाह आत्मनः पुत्रवत पश्ये तैर एशाम अंतरम कियत। मृग, मृग मतलब हिरण, ऊंट, गधे, बंदर, चूहे, सांप, पक्षी, मक्खी। आप सोच रहे होंगे क्या बोलने जा रहे हैं। नारद मुनि कहते हैं कि इन सब को आत्मनः पुत्रवत पश्येत, कि इन सब प्राणियों को अपने पुत्र के समान समझना चाहिए गृहस्थ को। कितनी विशाल दृष्टि है देखिए हमारे शास्त्रों को। आपके पुत्र को आप कैसे देखते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं, उसी दृष्टि से इन प्राणियों की ओर देखना चाहिए, समझना चाहिए कि ये प्राणी भी हैं, ये भी मासूम हैं, इनकी भी सुरक्षा हमें करनी चाहिए, ये भी हमारे बच्चे हैं, इनको भी जीने का अधिकार है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कोई प्राणियों का संरक्षण नहीं कर रहा है, बल्कि कत्ल खाने खुल रहे हैं सब जगह, और पशुओं की बड़ी मात्रा में कत्ल हो रही है, और फिर कोई न कोई ये यात्रा वो यात्रा इसमें उसमें कितने लाखों लाखों पशुओं की हत्या हो जाती है, मासूम पशुओं की, जिनका हमें वास्तव में संरक्षण करना चाहिए, और हम ही उनको मारे जा रहे हैं। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि खेती में भी कितने सारे कीटाणु वगैरह प्राणी आते हैं, और आजकल किसान रासायनिक कीटनाशक का उपयोग करते हैं उनको मारने के लिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यह भी पाप है, रासायनिक ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वास्तव में वो जो कीटाणु है वहां जीव जंतु हैं, उनको भी उस अन्न के ऊपर थोड़ा अधिकार है। मिट्टी हमने नहीं बनाई, बीज हमने नहीं बनाया, हवा पानी हमने नहीं बनाया, ये सब निसर्ग का देन है, भगवान का भेंट है हमारे लिए। तो भगवान की संपत्ति के ऊपर केवल मनुष्य का अधिकार नहीं है, सारे प्राणी मनुष्य जो सारे प्राणी हैं 84 लाख योनि सब भगवान के बच्चे हैं। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदः पिता। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं बीज प्रदाता हूं सारे 84 लाख योनियों का। तो भगवान की दृष्टि से चाहे वो कोई कीड़ा हो, चाहे कोई सांप हो, चाहे मनुष्य हो, उनके लिए सब बच्चे हैं। और भगवान ने ये सृष्टि सबके लिए बनाई है, सारे 84 लाख योनियों के लिए बनाई है, केवल मनुष्य के लिए नहीं। तो उन्होंने इस सृष्टि में, इस निसर्ग में सबके आहार के लिए कोई व्यवस्था कर ली है। तो अगर मनुष्य सोचने लगे कि ये जो खेती है ये केवल मेरे लिए है, मनुष्य के लिए है, तो ऐसा नहीं है, हमें बांट के लेना चाहिए। अगर खेती का थोड़ा हिस्सा भी अगर वो ले लेते हैं तो उनका अधिकार है उसके ऊपर। कभी कभी पक्षी आकर कुछ खा लेते हैं, कभी कभी कुछ और कीटाणु आते हैं, हाँ थोड़ा बहुत हमें संरक्षण करना चाहिए। कई खेतों में क्या होता है, जैसे एक जगह हम गए थे, वहां पर वो जंगली सुअर आते हैं और सारे तहस नहस मचा देते हैं, सारे खेत में सब कुछ सत्यानाश कर डालते हैं, खत्म कर डालते हैं पूरे खेत को, खाते नहीं है कुछ, केवल नष्ट करके जाते हैं। तो प्रश्न ये उठ सकता है कि हमें तो बच्चों की तरह उनका संरक्षण करना चाहिए, तो हम उनको क्यों रोकेंगे, हमें रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए। अरे अभी अभी यहां बताया कि नहीं उनको बच्चों की तरह पालन करना चाहिए, आप क्यों बोलते हैं कि रोकना चाहिए। हाँ अच्छा, मान लीजिए कि वो खाते खा रहे होते तो फिर हाँ जरूरत से ज्यादा हाँ है हाँ नुकसान कर रहे हैं। देखिए आपका बच्चा घर में तहस नहस मचाएगा, अब क्या करेंगे, उसको रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे। पत्थर लेके कांच तोड़ने लगता है, बर्तन इधर का उधर फेंकने लगता है, दूध उड़ा के नीचे रखता है, तो आप उसको रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, दो चमाटे मारेंगे कि नहीं मारेंगे। तो यहां क्या बताया, जैसे आपके बच्चे के साथ आप व्यवहार करते हैं वैसे बच्चा को गलत काम करता है तो आपको अपने घर की सुरक्षा करनी है ना। आपने कोई 100 रुपए का नोट रखा, बच्चे ने लेकर फाड़ दिया, आप रोकेंगे नहीं उसको? रोकेंगे आप। उसी तरह से अगर बच्चा कुछ सीमा के भीतर कुछ मांगता है उसको देना चाहिए, उसको खुश रखना चाहिए, उसका भरण पोषण करना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन बच्चा कोई गलत काम करता है तो घर की उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। तो इसलिए ऐसे कोई जंगली जानवर आके खेत में आक्रमण करते हैं, हमला करते हैं, तो फिर अगर किसान उसे एक ढंग से रोकने का प्रयास करे तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन केवल बड़े पैमाने से सारे प्राणियों को मार डालना, ये सब रासायनिक चीजों को इस्तेमाल करना, ये करना बहुत कठिन है, ये बहुत बड़ा पाप है। एक व्यक्ति हमें बता रहे थे कि ऐसे भी प्राणी जो होते हैं इनको मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल उस प्राणी की विष्ठा जो है आप वो खेत के बाहर आप रख दीजिए। कोई भी प्राणी अपने विष्ठा के पास आना नहीं चाहता है, जब वो जंगली पशु आएगा वो सूंघेगा अपने ही विष्ठा, वो दूर भाग जाएगा, फिर वो खेत में नहीं जाएगा। तो ऐसे जब सीधे सीधे पद्धतियां उपलब्ध हैं तो क्यों उनको हम जान से मार डालें? तो थोड़ा बहुत चाहे कि मनुष्य कुछ सोच ले, और सारे जो सोचने के बाद भी कोई मार्ग नहीं निकल आए तो फिर दूसरी बात। लेकिन देखिए नारद मुनि ने कौन से विषय के ऊपर चर्चा की है। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि केवल कृष्ण भावना का पथ जो है यही एकमात्र साम्यवाद है, परिपूर्ण साम्यवाद। साम्यवाद आप जानते हैं ना, साम्यवाद कम्युनिस्ट जो रशिया में चीन देश में पहले था। साम्यवाद में वो क्या करना चाहते हैं, सबको समान दृष्टि से देखना चाहते हैं। कहते हैं कि हम सबको समान दृष्टि से देखते हैं लेकिन केवल मनुष्य समाज में, प्राणियों को क्यों नहीं समान दृष्टि से देखते, प्राणियों की क्यों हत्या करते हैं, बड़े बड़े कत्लखाने क्यों खोलते हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं ये परिपूर्ण साम्यवाद है क्योंकि हम सारे प्राणियों को समान दृष्टि से देखते हैं। और आगे फिर 12वां पॉइंट आखिरी पॉइंट करेंगे, इसके बाद हम करेंगे, ये भी थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट है, अच्छा है। नारद मुनि कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए जो कि गृहस्थ आश्रम में है कि वो कुत्तों का मांस खाने वालों का, मतलब चांडाल और हर प्रकार के ऐसे जो प्राणी वगैरह होते हैं उनका वो भरण पोषण करें, मतलब कोई है तो उनको भोजन दें, कुछ देखभाल करें उनका, जो उनके लिए आवश्यक है वो देखना चाहिए। मतलब मनुष्य समाज की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी आदमी भूखा नहीं हो, और ऐसे जो भी प्राणी हैं वो भी भूखे नहीं रहें। यहां खास करके नारद मुनि कुत्ते की बात करते हैं। कुत्ता एक पालतू जानवर माना जाता है लेकिन हमारे वैदिक शास्त्र में बताया जाता है कि कुत्तों को घर में नहीं रखना चाहिए, घर के बाहर। जैसे कि गांव में कुत्ते कई इधर उधर गांव में घूमते रहते हैं, खेत का संरक्षण करते हैं लेकिन घर के अंदर नहीं आते हैं। लेकिन आजकल बड़े बड़े शहरों में भी 20-25 मंजिल वाले बड़े बड़े गगनचुंबी अट्टालिकाओं में भी वो बड़े बड़े कुत्ते, छोटे छोटे कुत्ते सब रहते हैं घरों में। वो घर में तो क्या, हॉल में तो क्या, बेडरूम में जाते हैं, और बेडरूम में नहीं, वो मालिक के बिस्तर पे उनके साथ में सोएंगे, बड़े डनलो पिलो वाले अच्छे तकिया में, रेशम के कपड़े वगैरह वगैरह। देखिए कितनी अजीब मुसीबत हो गई है कि कुत्ते को भगवान ने बनाया मनुष्य के संरक्षण के लिए, मनुष्य की रक्षा करने के लिए, पर अभी मनुष्य कुत्ते की रक्षा करने के में लग गया है। अभी कुत्ते का पालन करना, उसको इधर उसको ले जाना, अभी उसको सैर करने के लिए ले जाना चाहिए, साथ में डब्बा लेके जाते हैं। सिंगापुर में अगर आप कुत्ते को ले जा रहे हैं और कुत्ता ने सड़क अगर गंदा किया तो आपको $500 फाइन उसी क्षण देना पड़ता है। $500 मतलब हमारे रुपए के हिसाब से देखा जाए बहुत ज्यादा हो जाता है, 15-20 हजार रुपए हो जाता है या ज्यादा भी होगा। तो इतना केवल आपने कुत्ते को सैर करने के लिए ले गए और उसने गंदा कर दिया रास्ता, तुरंत पुलिस आके आपको फाइन करेगा। तो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े आदमी सूट टाई ये वो पहन के एक हाथ में कुत्ता दूसरे हाथ में डब्बा, देखे क्या परिस्थिति है। रहते हैं बड़े बड़े इमारतों में, बड़े बड़े इसमें है, बड़ा गाड़ी बंगला एयर कंडीशन ये वो सब कुछ है, दुनिया भर की चीजें उनके पास हैं, लेकिन कुत्ते के पीछे इतना ये करते हैं, इतनी सेवा करनी पड़ती है, इतना संरक्षण करना पड़ता है। और विदेश में आजकल ऐसे भी है, हमने खुद अपने आंखों से देखा है कि कुत्तों के लिए ब्यूटी सैलून है। यहां जैसे माताओं के लिए लेडीज के लिए होते हैं ना, यहां शहरों में ब्यूटी पार्लर ब्यूटी सैलून ऐसे होते हैं ना, तो ऐसे हम देख के आश्चर्यचकित रह गए। एक भक्त हमारे साथ में थे जो हमें दूसरी जगह ले जा रहे थे, हमने कहा ये क्या है, बोल हाँ ऐसे तो बहुत है इधर, मतलब कुत्तों को वहां ले जाते हैं और फिर कुत्तों को नहलाते हैं, उनको शैंपू करते हैं, उनको हेयर स्टाइल करते हैं बाल का, ये सब विश्वास के बाहर है हमारे लिए, ये सब वाकई सत्य है, ये आजकल हो रहा है। इस तरह से कुत्ते की सेवा इतने करते हैं ये लोग, इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि इंस्टेड ऑफ सर्विंग गॉड दे आर सर्विंग डॉग, मतलब गॉड की सर्विस करने के बजाय, सेवा करने के बजाय डॉग की सेवा करते हैं। गॉड मतलब GOD और उसका उल्टा है DOG, जो डॉग, क्योंकि बुद्धि इतनी उलट उल्टी हो गई है, विपरीत हो गई है कि GOD की सेवा करने के बजाय उल्टा आप DOG की सेवा कर रहे हैं। और इस प्रकार से घर में बिठा के उनको क्या क्या करना, उनकी सेवा करना दिन रात। और आजकल पश्चिम देशों में ऐसी व्यवस्था ऐसी परिस्थिति हो गई है कि बच्चे जब 15-16 साल के हो जाते हैं तो वो माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं, वो अपने अपना घर बसाते हैं 15-16 साल में। और फिलहाल थोड़े भक्त आए थे विदेश से, तो वो बता रहे थे अब वो भी जमाना गया कि जब बच्चे छोड़ के चले जाते थे, आजकल माता पिता बच्चों को 15-16 साल में घर भागा देते हैं बाहर, तुम जाओ अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अब ये परिस्थिति भी आ गई है। तो क्या होता है फिर बुढ़ापे में, बुढ़ापे में कोई नहीं देखभाल करने के लिए, बच्चे अपने अपने जीवन में उधर उधर चले जाते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है। आखिर इंसान को कुछ प्रेम चाहिए, कुछ संबंध चाहिए, तो आदमी क्या करता है, कुत्ते बिल्लियों को रखता है। और प्रभुपाद जी इस बारे में बहुत टीका करते थे कि अमेरिका यूरोप इन पश्चिम देशों में कितने ऐसे वृद्ध लोग हैं जो अपने घरों में भर भर के कुत्ते बिल्ली रखते हैं। बंबई में भी हमने देखा एक जगह, हम कहीं सत्संग के लिए गए थे तो अचानक हमने जब खिड़की से देखा तो एक घर के अंदर देखा 20-25 बिल्ली। तो हमने उनसे पूछा कि अरे इतने सारे बिल्ली इधर क्या बात है, बोले नहीं और भी है बहुत। बोले एक अकेली महिला यहां रहती है, बूढ़ी है, और उनके न जाने कितने डजन उनके पास बिल्लियां पड़ी हैं उनके घर में, क्योंकि और कोई नहीं है प्रेम करने के लिए, प्रेम लेने के लिए कोई नहीं, तो इन्हीं सब प्रेम करते हैं। तो देखिए जब हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवत प्रेम जब हम भूल नहीं करते हैं, तो हमें फिर क्या क्या करना पड़ता है, कहां कहां हमें प्रेम के लिए ढूंढना पड़ता है। इस प्रकार से एक छोटी सी कहानी याद आती है, बोलूं कि ज्यादा भूख लगी है, है? देखिए एक बार एक साधु था, इन साधुओं को रामानंदी कहते हैं, रामानंदी मतलब एक टाइप के साधु होते हैं, एक प्रकार की संप्रदाय है कहिए। तो एक बार ये रामानंद साधु जो है ना वो बद्रीनाथ के रास्ते में बैठकर वो लोग भिक्षा मांगते थे। वो कहते थे ऐसे जो भी उनको चाहिए वो मांगते थे। प्रभु रामचंद्र जी के भक्त थे तो प्रभु राम से मांगते थे, एक से राटा दिलाई दे राम, एक से राटा दिलाई दे राम। तो कोई बेचारा आता था आदमी, कोई दानी व्यक्ति आता था, कुछ उसको पैसा दे देता, आटा दे देता था, सारी पूरी हो जाती थी। एक से चावल दिलाई दे राम, ठीक है कोई आके चावल देके चला गया। तो इस प्रकार से इस साधु ने एक दिन सोचा कि मुझे भी बद्रीनाथ ऊपर जाना चाहिए। अब चलते 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 बेचारे गए, लेकिन थोड़े बूढ़े हो गए थे। अभी सोचने लगे कि अब कहां ऊपर चलूं इस बूढ़े शरीर को लेकर साथ में, बहुत कष्ट होगा, अब क्या किया जाए। तो किसकी याद आई? प्रभु राम की याद आई। तो बोलने लगे एक घोड़ी दिलाई दे राम, एक घोड़ी दिलाई दे राम। क्यों? क्योंकि घोड़ी के ऊपर बैठकर फिर हम ऊपर जा सकते हैं। घोड़ी चढ़ेगी, हम घोड़ी के ऊपर बैठेंगे, बद्रीनाथ ले जाएगी हमको। और आश्चर्य क्या हुआ, सामने घोड़ी आ गई। अरे वाह, तो देखा बहुत अच्छा है। तो सोचा कि चलो अभी तो जाना चाहिए, हमारा काम हो गया। तो जैसे ही घोड़ी के ऊपर बैठने गए, एकदम धक्का दिया, उसके दुर्भाग्य से बेचारे वो जो घोड़ी थी वो गर्भवती थी और तुरंत उसने बच्चे को जन्म दे दिया। बच्चा का जन्म हो गया, बच्चा बाहर आ गया, नीचे था जमीन के ऊपर। तो साधु ने सोचा कि चलो अब जन्म हो गया ना, चलो अभी उसके ऊपर बैठकर चले जाए। लेकिन जो भी ये साधु कहे वो घोड़ी हिलने को तैयार नहीं, एक कदम आगे नहीं ले। बहुत सोचा, रे आओ आओ आओ, खींचा कुछ किया, घोड़ी आगे चलने के लिए तैयार नहीं। तो फिर साधु ने सोचा, हाँ अभी इसने बच्चे को जन्म दिया है ना, तो बच्चे को छोड़कर नहीं जाएगी ये, तो अगर इसको मेरे साथ में ले जाना है तो मुझे बच्चे को भी साथ में ले जाना पड़ेगा। तो साधु ने क्या किया, बच्चे को लिया, अपने कंधों पे रखा और चलते गए आगे। और फिर घोड़ी जो है पीछे 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 आते गए, हाँ सर अभी आ रही है देखो। और फिर धीरे 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 से जब ऊपर चलते गया, फिर उसने सोचा, अरे राम मैंने घोड़ी मांगी चढ़ने के वास्ते, लेकिन घोड़ी मुझ पर चढ़ गई है, क्या मुसीबत हो गया। तो ऐसे विकट परिस्थिति है। देखिए उसी प्रकार से हमने कुत्ते को रखा अपनी सुरक्षा के लिए, और हुआ क्या, हम उसकी सेवा करते रहे, उसकी सुरक्षा देखते रहे। ठीक उसी प्रकार से इस संसार में भी हम इतने सारे चीजों को स्वीकार करते हैं, सोचते हैं कि ये हमारे लाभ के लिए होंगे, इनसे हमारा भला होगा, हमारा इंद्रिय सुख बढ़ जाएगा, हमें सुख मिलेगा। लेकिन क्या होता है, केवल हमारे जो भार है, बोझ है, वो बढ़ जाता है, बस केवल जीवन में संकट बन जाता है। इतने सारे कंधों को, घोड़ों को लेकर हम चल रहे हैं जीवन में, हमने मांगा कुछ और हुआ कुछ और, ये परिस्थिति है। इसलिए हमें बिल्कुल सरल जीवन बिताना चाहिए, और ऐसे प्राणियों को भी हमें बाहरी बाहर से ये देना चाहिए, भोजन वगैरह देकर उनको संतुष्ट रखना चाहिए। और घर में ऐसे कुत्ते बिल्ली रखने का डर और एक बहुत बड़ा डर है, वो क्या है कोई बता सकते हैं? भगवान का भोग रहता है, वो भी उसको दूषित कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है अवश्य। लेकिन और भी एक बात है, बीमारी हो सकती है, ये भी ठीक है। आप सब बड़े बुद्धिमान, एक के बाद एक आप कितने कारण दे रहे हैं। लेकिन और भी एक कारण है, बिल्ला चूहा का वो भी है, लेकिन और भगवान से विमुख हो जाएंगे किस तरह से, उसमें बिजी रहेंगे वो भी सही है, लेकिन और गंभीर बात, एक मिनट, यही सही जवाब है। देखिए जब हमारे साथ में घर में रहेंगे कुत्ते बिल्ली, तो हम क्या करेंगे, उनकी सेवा करेंगे ना। और टॉमी टॉमी इधर आओ, टॉमी उधर जाओ, टॉमी ये लो, टॉमी वो लो, हा? तो क्या होगा, आसक्ति बढ़ेगी कि नहीं उसके प्रति? आसक्ति बढ़ेगी तो क्या होगा, तो हमारा स्मरण ज्यादा से ज्यादा उनकी ओर होगा, बराबर है, ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में सोचने लगेंगे। और मृत्यु के समय अगर वो हमारे सामने हुए, उनका स्मरण करते हुए हमने प्राण त्याग दिया, फिर क्या होगा, हम भी टॉमी बन जाएंगे अगले जन्म में, सही बात है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस चीज का स्मरण व्यक्ति मृत्यु के समय करता है, उसी तरह के शरीर को वो अगले जन्म में प्राप्त करता है। अगर हम कुत्ते बिल्लों के साथ आसक्ति बढ़ाते हैं, ये बहुत बड़ा खतरा है कि हम उनका स्मरण करते हुए प्राण को त्यागें, और फिर उनका स्मरण करते हुए प्राण त्यागेंगे तो अगले जन्म में हमें कुत्ता बिल्ली का शरीर मिलेगा। कितना बड़ा खतरा है, धोखा है। देखिए, तो जो भी ऐसे संत महापुरुषों ने उपदेश दिए हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा एक ये है, विज्ञान है। इसलिए ज्यादा आसक्ति इन पशुओं से, ऐसे कुत्ते बिल्लियों से नहीं करनी चाहिए, लेकिन करुणा की दृष्टि रखनी चाहिए। उनका भरण पोषण की व्यवस्था हम कर सकते हैं। इस प्रकार से गृहस्थ में आदमी को चाहिए कि अपने जीवन पद्धति को ऐसे बनाए, सरल जीवन ऊंचे विचार, जिससे कि उसे संसार की आसक्ति कम होते जाए, कृष्ण भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती जाए, और मनुष्य जीवन को सफल करके वो भगवान के धाम में चले जाए। हर एक है, हर काम में शास्त्र की जरूरत है। शास्त्र ये क्या है, नहीं ठीक है कि चतुर्भुज रूप में दर्शन भगवान का कब होता है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते थे कि भगवान का दर्शन करने के लिए इतना आतुर न रहो, भगवान की सेवा इतनी अच्छी तरह से करो कि भगवान आपको देखने के लिए आतुर होंगे। और जब भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे, तो फिर खुद ब खुद एक दिन सही समय पर हमें भगवान का दर्शन होगा। चतुर्भुज या दो भुजाओं वाला रूप भगवान का, वो केवल वही व्यक्ति देख सकता है जिसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हुआ हो और जो भक्ति से भरा हुआ हो। भक्त्यात्वनन्या शक्य एह अहम एवं विधोर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। भगवान बताते हैं कि केवल भक्ति से ही तुम मुझे जान सकते हो, मेरे दर्शन कर सकते हो और मेरे धाम में जा सकते हो। तो केवल भगवान का नाम कीर्तन करने से, भक्तों के संग में आकर उनका गुणगान करने से सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। सारी सिद्धि मतलब भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम, और अंत में हम उनके धाम में जाकर उनके संग में रह सकते हैं। आश्रम में कितने साल तक क्या रहना चाहिए, कितने साल तक रहना चाहिए गृहस्थ आश्रम में, कितने साल तक रहना चाहिए? वैसे गृहस्थ आश्रम के बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ मतलब क्या है, वन में प्रस्थान करना। आजकल वन में तो वन तो है ही नहीं, वन में प्रस्थान करना मतलब आजकल रिटायरमेंट में ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के लिए लगाना। आजकल के हिसाब से ये वानप्रस्थ होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा समय आपका भगवान की सेवा में लगाओ। 50-55 साल के बाद, खास शास्त्रों में बताया 50 साल के बाद, आपको अभी पूरा समय भगवान के लिए देना चाहिए। पति पत्नी को वानप्रस्थ स्वीकार करके भगवान की सेवा करनी चाहिए। इसके बाद भी संसार में अटक के नहीं रहना चाहिए। 50 में देर हो ठीक है, 55 लेकिन और ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बीतते जा रहा है, समय बहुत कम है। ज्यादा से ज्यादा हमें भगवान की भक्ति करके जीवन को सफल बनाना चाहिए। ठीक है, पता है और बहुत प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन समय भी काफी हो गया है और आज जन्माष्टमी के लिए भी इष्ट गोष्ठी करनी है, शाम को भी कार्यक्रम है, तो कथा यहीं समाप्त करते हैं और अभी थोड़ी देर कीर्तन करके फिर महाप्रसाद होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।